السلام علیکم، آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب عدل و انصاف پر مبنی سچی کہانیاں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف ماریا چودھری ہیں۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03212138225۔ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 8۔ سفر خان کی تقریر سن کر تمام فوجی سردار متاثر ہوئے اور ایک زبان ہو کر بولے کہ ہم جان دینے اور آگ میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں۔ دشمنوں سے لڑائی شروع ہوئی تو ظفر خان جنگی ہاتھیوں کو لے کر آگے بڑھا، جن کے خوفناک حملوں کے ساتھ سوار بھی گھوڑے اڑا کر دشمن پر جا ٹوٹے۔ حملے آور ہاتھیوں کی بلائے سیاہ سے بالکل ہی ناواقف تھے اور اپنی خونخواری اور گریز بھائی کے باوجود ہاتھوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس سے ان کی صفوں میں انتشار پھیلا تو شاہی سوار خونخوار حملوں کو ڈھکیل ڈھکیل کر تاتیک کرنے لگے، اور جب ان کے کشتوں کا پشتہ الگ گیا تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ظفر خان اپنے جوش و تہور میں ان کو مارتا کاٹتا 18 کوس تک پیچھے ہٹا لیا گیا، لیکن ایک جگہ غنیم کے نرگے میں گھر کے گھوڑے سے گر پڑا۔ پھر بھی پیادہ لڑ کر بے شمار حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن بلا آخر شہید ہوا۔ ظفر خان کی اس شجاعت و جلاوت کی دھاک تاتاریوں پر ایسی جمی کہ اگر کسی تاتاری لشکری کا گھوڑا پانی نہ پیتا تو وہ گھوڑے سے کہتا، کیا تو نے ظفر خان کو دیکھ لیا ہے؟ نمبر 120، ایک خاتون کی بہادری۔ سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے عہد حکومت میں بڑی بڑی فتوحات کی، جنوبی ہند کو فتح کیا، تاتاریوں کے سیلاب کو روکا جس کو بغداد، خوارزم، چین، ایران اور روس کی طاقتیں بھی نہ روک سکیں۔ ہندوستان کے اندر تمام راجوں نے اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا تھا۔ ایک دن اس نے دربار میں کہا کہ اب ہندوستان میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جو مجھ سے سرکشی کر سکے۔ قلعہ جالور کا راجا کنیرید دیور دربار میں موجود تھا۔ اس نے متکبرانہ لہجے میں کہا کہ جالور کا قلعہ کبھی متی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر سلطان برہم ہوا، اس وقت تو خاموش رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنی ایک لونڈی گل بہشت نامی کو تپا سلار بنا کر جالور کی مہم پر روانہ کیا۔ گل بہشت اپنی فوج کے ساتھ برقباد کی طرح جالور پہنچی، راجہ قلعہ میں بند ہو گیا۔ گل بہشت نے بڑی بہادری اور جرات سے قلعہ کا محاصرہ کر کے جنگ شروع کر دی۔ راجہ کو ایک عورت کی سپہ گری اور جنگ جوئی کا گمان بھی نہ تھا۔ قلعہ فتح ہونے میں کچھ دیر تھی کہ یکبیک گل بہشت بیمار پڑی اور موت کے حملے کو نہ روک سکی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا شاہین لڑتا ہوا مارا گیا، اور ایک نئے سپہ سلار نے پہنچ کر جالور فتح کر لیا۔ نمبر 121، موسیقی میں مہارت تاما۔ سلطان علاء الدین خلجی کے دربار میں موسیقی کے بڑے بڑے ماہرین بھی جمع تھے۔ اس کے دربار میں جنوبی ہند سے بہت سے ہندو ماہرین موسیقی آ کر اس کی इसके अमरा की जरपाशी से शराब होते। इनमें नाई गोपाल भी था, जिसके संघमा सुनकर 2000 शागिर्द अपने कंधे पर उठाया करते थे और वो कभी जमीन पर पाँव नहीं रखता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के दरबार में एक अमीर खुसरू भी था, जिसको मौसिकी में गैर मामूली किस्म की महारत थी। नाइक गोपाल सुल्तान के दरबार में अपना फन दिखाता तो अमीर खुसरू की तख्त की आड़ में छुपकर सुना करते थे। गोपाल में जब कोई राग शुरू करता तो ऐसा मालूम होता कि इस राग में इसका कोई मद मुकाबिल नहीं। अमीर खुसरू ने गोपाल के तर्ज को अच्छी तरह समझ लिया तो दरबार में आकर ईरानी राग कौल को अपने जनूबी हिंद के हरीफ के स्टाइल में ऐसा गाया कि गोपाल सुनकर मबहूत हो गया और ये कहकर अमीर खुसरू की बर्तरी तस्लीम कर ली कि मैं जानता हूँ कि ये चोरी है, लेकिन ये चोरी इस तरह की गई है कि मेरा भी इस पर इख्तियार नहीं। नंबर 122 फिक्रे रियाया। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की मजलिस में एक बार अलाउद्दीन खलजी का जिक्र आया तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया कि मुल्क इल्तिजार काजी हमीदुद्दीन जब होत आए तो एक दावत में मुझको भी बुलाया, और दावत के बाद जब तमाम लोग रुखसत हो गए तो तन्हा रह गया। असनाए गुफ्तगु में मलिक अल्तिजार ने कहा कि एक बार मैंने सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को पलंग पर बरहना सर और जमीन पर पांव लटकाए हुए बैठे देखा है। वो फिकर में गर्क और मबूत था। मैं सामने पहुंचा तो इसको बिल्कुल खबर नहीं हुई। मैंने बाहर आके मुल्क फरीद बुक से कहा कि आज सुल्तान को मैंने इस हाल में देखा है, तुम भी चलकर देखो। मेरे साथ वो अंदर गया तो सुल्तान को बातों में लगाया, फिर अर्ज किया हुकुम हो तो कुछ बयान करूं। सुल्तान ने इजाजत दी तो मैं यानी कजी हमीदुद्दीन आगे बढ़ा और अर्ज किया। मैं अंदर आया तो देखा हजूर बरहना सर परेशान हाल और फिकरमंद है। आपको किस बात की फिकर है? सुल्तान ने कहा, सुनो, मुझको चंद रोज से ये फिकर है कि मुझको अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक का हाकिम बनाया। अब कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे तमाम मखलूक को नफा पहुंचे। सोचा क्या करूं? अगर अपना खजाना तकसीम करूं तो भी मखलूक को नफा ना होगा। अब एक बात सोची है कि गल्ला की अर्जानी की तदबीर करूं, इससे मखलूक को जरूर फायदा पहुंचेगा। इसकी तदबीर ये है कि बंजारों के नायकों को हुक्म दो के वो हाजिर हो, और जो गल्ला इतराफे मलिक से हजारों बेलों पर लाते हैं इसकी कीमत अपने खजाने से अदा करूं, और इनको खानगी खर्च के लिए अलहदा से रुपए दूं ताकि वो बेफिक्र रहें, और इतराफे मुल्क से गल्ला लाकर मेरे नरख मुकर्रा के मुताबिक परोख करें। काजी हमीदुद्दीन ने ये वाकिया बयान करके कहा कि गर्ज यही बात अमल में लाई गई। शाही फरमान जारी हुए, कीमत और खर्च शाही खजाने से अदा किए गए, गल्ला बाकसरत आने लगा। चंद रोज के बाद गेहूं 7 जेतल में 1 मन बिकना शुरू हुआ। घी शक्कर और दूसरी चीजें भी अर्जा हो गईं और तमाम लोग आसूदा रहने लगे। नंबर 123 बख्शिशो व इनाम। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के बाद सुल्तान कतबुद्दीन मुबारक खलजी तख्त पर बैठा तो अमीर खसरू इसके दरबार से भी वाबस्ता रहे। इसकी फरमाइश पर अमीर खसरू ने अपने मशहूर मसनवी ना पिलर लिखी, जिसमें हिंदुस्तान को एक जन्नत अर्जी साबित किया और दूसरे तमाम ममालिक पर इसकी बरकरी दिखाई। सुल्तान कतबुद्दीन मुबारक खलजी इस मसनवी को पढ़कर इतना खुश हुआ कि इसने अमीर खुसरो को हाथी के बराबर तोलकर रुपए इनाम दिए। 124 हक गोई। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी अपने भाइयों खिजर खान और शादी खान को कत्ल करके तख्त नशीन हुआ था। खिजर खान और शादी खान हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खास मुरीदों में थे, इसलिए सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी इनसे बदगुमान हो गया। इसकी बदगुमानी अदावत में तब्दील हो गई। इसने मसलतन तहरवर्द ये सिलसिला के बुजुर्गों से मरासम बढ़ाए और इनसे अपनी शिफ्तगी और फरीकतगी का इजहार किया। एक बार इसने हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के पोते हजरत रुकनुद्दीन को मुल्तान से दिल्ली आने की दावत दी। इस वक्त वो मुल्तान के सहरवर्दिया सिलसिला की खानका के सजादा नशी थे। जब वो दिल्ली तशरीफ लाए और सुल्तान से मिले तो इसने पूछा कि दिल्ली में सबसे पहले किस शख्स ने आपका इस्तकबाल किया। हजरत रुकनुद्दीन को हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान के इनात का हल मालूम होता, लेकिन वो खुद इनको बहुत महबूब रखते थे, इसलिए उन्होंने जवाब दिया, इसने जो इस शहर का सबसे अच्छा आदमी है यानी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने। 125 बहिमी एहतराम। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी गायबाना तौर से भी एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते। एक मर्तबा एक खरासानी आलिम ने हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया से कहा कि मैं आपके पास आता हूँ तो आप हर बार मुझको कुछ न कुछ खिलाते हैं, लेकिन मैं हजरत शेख रुकनुद्दीन के पास कई बार गया तो उन्होंने मुझको कोई चीज नहीं खिलाई। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया कि मैं इस हदीस पर अमल करता हूँ कि जिसमें ये कहा गया है कि जो शख्स जिंदा की जियारत करे इसके यहाँ कुछ ना चखे तो गोया इसने मर्दे की जियारत की। और खरासानी आलिम ने पूछा, क्या शेख रुकनुद्दीन तक ये हदीस नहीं पहुँची। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, शेख रुकनुद्दीन अमल मानवी करते हैं और वो जौके रूहानी चकाते हैं। खरासानी आलिम ने किसी मौके पर शेख रुकनुद्दीन से अर्ज किया कि शेख निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि आप जौके रूहानी चकाते हैं और वो जौके जिस्मानी चकाते हैं। शेख रुकनुद्दीन ने फरमाया, बरादरम निजामुद्दीन ने तवाजा की है, इन में दोनों वसफ हैं, वो जौके रूहानी भी अता करते हैं और जौके जिस्मानी भी। नंबर 125 खिदमते खलकुल्ला। हजरत शेख रुकनुद्दीन का मामूल था कि जब वो सुल्तान कुतुबुद्दीन खलजी के पास तशरीफ ले जाते तो रास्ते में अपनी सवारी के तख्त रवा को ठहराते जाते ताकि अहले जरूरत अपनी दरख्वास्तें सुल्तान की खिदमत में पेश करने के लिए इनकी सवारी में डाल दें। बाज जरूरतमंदों की मारूजात जबानी भी सुनते थे। शाही महल के पास पहुंचकर दो दराजों तक तख्ते रवा पर सवार रहते। तीसरे दरवाजे के करीब सुल्तान इनकी ताजीम और इस्तकबाल के लिए खड़ा नजर आता तो वो उतर जाते। सुल्तान बड़े अदब से इनको दरबार में ले जाकर बिठाता और खुद मौदब दो नवाजों होकर इनके सामने बैठ जाता। इसके बाद हजरत शेख रुकनुद्दीन शहर के लोगों की दरख्वास्तें सुल्तान के सामने पेश करते। वो हर एक की दरख्वास्त को गौर से पढ़ता और इसकी पुस्तक इसी वक्त हुक्म सादिर कर देता। حضرت شیخ رکن الدین واپسی کے وقت تمام درخواستوں کو ساتھ لیتے آتے. نمبر 127 درویشانہ جمال. حضرت رکن الدین ملتانی کے ایک محبوب مرید شیخ عثمان تھے جو ترک و تجرید کی زندگی بسر کیا کرتے تھے. 7 برس تک اسلامی ممالک کی سیاحت کی اور جب اپنے مرشد حضرت رکن الدین ملتانی کے پاس لوٹ کر آئے تو مرشد نے مرید کو اپنی دستار پہنائی اور بہت کچھ دنوں کے بعد ان کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں دہلی بھیج دیا جہاں وہ حضرت خواجہ کے شیفتہ و فریفتہ ہو کر رہے. ان کو سما کا بھی ذوق تھا لیکن اس زمانے میں سلطان غیاث الدین تغلق کی طرف سے محفل سما پر قدغن تھی. ایک روز خواجہ نظام الدین اولیاء کا محبوب قوال حمید حسن شیخ عثمان سے ملنے آیا تو انہوں نے اس سے کچھ سنانے کی فرمائش کی لیکن اس کو شاہی قدغن کی وجہ سے تعمیل ہوا. شیخ عثمان نے اپنے حجرے کا کباڑ بند کر دیا اور امیر حسن سے گانے کے لیے مصر ہوئے. امیر حسن نے سلطان وقت کے خوف سے دھیمی آواز میں یہ بیت گانی شروع کی. زاہد زدی بر آمد و سونی زاہد کاد ترسا محمدی شد و عاشق ہما کے ساتھ. امیر حسن نے جب تکرار کے ساتھ اس کو گایا تو شیخ عثمان بے خود اور بے قابو ہو گئے. امیر حسن سے زور سے گانے کو فرمایا وہ بھی شیخ کے جذب و بے خودی کو دیکھ کر بے اختیار ہو گیا دل کھول کر گانے لگا. شیخ عثمان نے اس بے خودی میں دروازہ کھول دینے کا حکم دیا. کچھ قوال اور آ گئے اور یہ محفل سما جذب و کیف کی ایک ایسی مجلس بن گئی کہ کئی ہزار تماشیوں پر وجد طاری ہو گیا. شیخ عثمان مذکورہ والا شعر پڑھتے ہوئے حجرہ سے نکل پڑے اور تغلوق آباد کی طرف چل کھڑے ہوئے. قوال بھی ساتھ ساتھ گاتے جاتے تھے. پیچھے لوگوں کا مجمع تھا اور سب کے سب شیخ کے جذب و بے خودی سے سرشار تھے. اسی حالت میں شیخ شاہی محل کے پاس پہنچے. سلطان غیاث الدین تغلق کو خیال ہوا کہ کوئی فتنہ اٹھا ہے. ملک شادی خان کو تحقیقات کے لیے بھیجا. اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ شیخ عثمان پر پڑی تو ان کو مست الست دیکھ کر خود بہت متاثر ہوا. حکم دیا کہ ان کو ان کے ساتھیوں کو لا کر محل کے اندر ٹھہرایا جائے اور شاہی باورچی خانے سے ان کی ضیافت کا سامان کیا جائے. پوری جماعت 3 روز تک شاہی باورچی خانے کے الوان نعمت سے متنا ہوتی رہی اور جب شیخ عثمان رخصت ہونے لگے تو سلطان نے نظر پیش کی مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور غیاث پور کی طرف چل کھڑے ہوئے. نمبر 128 سما کی حرمت و حلت پر بحث. سلطان غیاث الدین تغلق کی ممانعت کے باوجود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کیا محفل سما برابر ہوتی رہتی. علماء نے ان کے خلاف شورش کی تو سلطان غیاث الدین تغلق نے ایک محضر طلب کیا جس میں مسئلہ سما کی تحقیق کے لیے تمام علماء اور مشائخ جمع کیے گئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی اس مجلس میں شریک ہوئے. بحث شروع ہوئی تو دونوں طرف سے سما کی اباحت اور حرمت کے دلائل پیش کیے گئے. چاشت کے وقت سے زوال آفتاب تک مناظرہ قائم رہا جس میں بڑی گرمی دکھائی گئی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے نفس غنا کے جواز میں جب حدیثیں پیش کی تو حنفی علماء نے کہا کہ تم مقلد ہو تم کو حدیث سے کیا مطلب, اگر حنفی فقہ کی روایت ہو تو پیش کرو. یہ سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا वो मुल्क क्यों कर आबाद रहेगा जिसमें लोगों की राय को अहादीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरजीह दी जाती हो। इस मजलिस में शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के नवासे मौलाना इल्मुद्दीन भी शरीक थे और वो अपने जमाने के जैद आलिम थे। सुल्तान ग्यासुद्दीन तगलुक भी इनका मोतगद था। उन्होंने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की ताईद की और समा की अबाहत में फैसला दिया, जिसके बाद सुल्तान ग्यासुद्दीन तगलुक ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को बड़े एजाज इकराम के साथ मजलिस से रुखसत किया। 129 तक्वा की मिसालें। मौलाना जलाउद्दीन मांगपुरी का खानदान जहद व इयादत और तक्वा के लिए मशहूर रहा और मौलाना ख्वाजा के वाली शेख हसामुद्दीन मांगपुरी के दादा थे। अपने जमाने के बड़े आबिद साबिर और मुतक्की आलिम समझे जाते थे। नमाज इशा पढ़कर आराम करते और जब तमाम लोग सो जाते तो उठकर फजर की नमाज तक इबादत करते। कुरान शरीफ की किताबत से माश पैदा करते रहे। वजू के बगैर हाथ में कभी कलम नहीं लेते थे। जिस जमाने में चोरों और डाकुओं का शहर में जोर शोर होता तो वो इस ख्याल से गोश ना फखाते कि शायद ये चोरी के जानवरों का गोश हो। वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा शेख मोहम्मद के बड़े मोतकद थे। शेख मोहम्मद शाहना लिबास पहनते, अमीरों की तरह जिंदगी बसर करते और बादशाहों की सोहबत में रहते, लेकिन तकवा का ये आलम था कि एक बार शहर के काजी ने अपनी यहाँ मदु किया मगर ये दावत ये कहकर रद्द कर दी कि 40 साल से किसी काजी के घर खाना नहीं खाया है। काजी दिल शिकस्ता हुआ तो कहा कि आपके लड़के को दीवाने कजा से कुछ मिलता है। काजी ने जवाब दिया नहीं तो शेख मोहम्मद ने फरमाया आपका लड़का अपनी मलकियत से खाना खिलाए तो खाऊंगा। नंबर 130 बादशाह वक्त की मुलाकात से परहेज। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के एक खलीफा शेख बरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में रहकर रशीद व हिदायत में मशगूल थे। सुल्तान मोहम्मद तगलुक दौलत आबाद पहुंचा तो जामे कुदवी में जुम्मे की नमाज पढ़कर शेख बरहानुद्दीन गरीब की मुलाकात के लिए रवाना हुआ। वो भी अपने मुर्शिद की तरह सलातीन के मुलाकात व सोबत पसंद नहीं करते थे। जब शाही सवारी के आने की खबर मिली तो दुआ करने लगे बादशाह से मुलाकात नहीं मालूम हो सुल्तान के दिल में क्या बात आई कि वो रास्ते से ही वापस चला गया। दरवेशाना फयाजी। सुल्तान ने एक दूसरे मौके पर इनकी खिदमत में 3,000 सोने के तिनके भेजे। मुल्क नायब बारबक ये रकम लेकर पहुंचा तो उन्होंने इस रकम के लेने से इनकार किया तो इसकी जरूरत नहीं, लेकिन सुल्तान ने मुल्क नायब बारबक को ये कहकर फिर भेजा कि ये रकम इनके लिए नहीं है बल्कि इनके खिदमत गुजारों के लिए है। शेख ने ये रकम ले ली और खादिम खास को बुलवाया कि घर में जो कुछ हो लाओ। खादिम ने 20 तिनके लाकर पेश किए और फरमाया कि इनको सुल्तान के 3,000 तिनके में मिलाकर फकरा में तस्लीम कर दो। ऐसा ही किया गया। नंबर 131 हसूले नेमत बातिनी। शेख बरहानुद्दीन गरीब जब दौलताबाद में मुकीम हुए तो वहाँ मौलाना सैयद दाऊद हसीन बड़े जैद आलिम थे। शहराज से दिल्ली आए और दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल हो गए। वहाँ उल्मा और तालबा का हुजूम था, इनके गिर्द रहता था। अपने इल्म के गुरूर में सूफिया और मशाइख के कायल ना थे, इन पर तंजो तशनी किया करते थे। एक रोज इनका एक शागिर्द शेख बहाउद्दीन गरीब के पास मुश्कात और मसाबी पढ़ने गया। वहाँ दर्स के बाद महफिल समा में भी शरीक हुआ। मौलाना सैयद दाऊद हसीन को मालूम हुआ तो इस पर बरहम हुए कि ना जाने की महफिल में क्यों शिरकत की। इसी बरहमी में शागिर ने कहा कि अगर शेख बरहानुद्दीन साहिब इल्म है तो इनसे मेरे चंद सवालों को हल करा के लाओ। इसके बाद इन सवालों को कागज पर लिखकर शागिर्द के हवाले किया। मौलाना इनको हल करने से कासिर और माजूर थे। इनको लिख रखा था कि बैतुल्ला जाकर हरमेन के उलमा से हल कराएं। जब शागिर्द ये सवाल लेकर शेख बरहानुद्दीन गरीब के पास पहुंचा, तो शेख ने इनके कई कई जवाब लिखे और जब इनको मौलाना सैयद दाऊद हुसैन ने पढ़ा तो इनके इल्म का सारा गुरूर जाता रहा। इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और शेख की तरफ गैर मामूली कशिश महसूस की और वो इनकी कयामगाह पर पहुंचे और जब सामना हुआ तो दौड़कर अपनी पेशानी इनके कदमों पर झुका दी। शेख ने फरमाया, हाँ हाँ मौलाना दाऊद हुसैन, ये रस्म शरीयत में जायज नहीं। मौलाना ने कहा, जब तक मैं इस रस्म को शरीयत के खिलाफ जानता था, नेमत वातनी से महरूम था। फिर ये शेर पढ़ा, दस्ते अस तलब निदारम तकारम बर आयद या जा रसद बजाना या जा जतन बर आयद। इसी वक्त बैत की और बाद में इनसे खरकाए खिलाफत पाया। नंबर 132 रजाओ तस्लीम। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के तमाम उम्र तर्क व तजरीद की जिंदगी बसर करते रहे। इनकी जात से किसी को ऐजा नहीं पहुंची। एक बार वो अपने हुजरे खास में मुराकबा में मशगूल थे कि एक कलंदर तरे आब नामी वहां पहुंचा और छुरी से बेदर पे हमले किए। खून हजरे से बाहर बहने लगा, लेकिन इनके इस्तगराक में फर्क नहीं आया और खून देखकर मुरीदीन हजरे में आ गए और देखकर सजदर हो गए। कलंदर को सजा देनी चाहिए, लेकिन हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने रोका। अपने मुरीदीन खास अब्दुल मुक्तदर शेख सदरुद्दीन तईब और शेख जैनुद्दीन अली को फाज बुलाकर कसम दी के कोई शख्स कलंदर को ईजा ना पहुंचाए। फिर कलंदर से माजरत की के अगर छुरियां मारते वक्त तुम्हारे हाथ को ऐजा पहुंची हो तो माफ करना, और 20 सोने के तिनके देकर इसको रुखसत किया। इनके इन्हीं औसाफ की बिना पर कहा जाता है कि चश्तिया सिलसिला में सबर रजा और तस्लीम का खात्मा इन पर हो गया। नंबर 133 अच्छी इबादत इलाही। शेख कतुबुद्दीन मुनव्वर हांसवी हजरत जमालुद्दीन हांसवी के पोते हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। इनके वालिद का नाम शेख बरहानुद्दीन था। पूरी जिंदगी तवक्कल और कनात में गुजारी। सलातीन और अम्रिया क्या जाना पसंद नहीं करते थे। लोगों के हुजूम से दूर रहते, अपने हुजरे से अपनी ख्वाहिश से कभी बाहर नहीं निकले। एक रोज वो अपने मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजलिस में शरीक थे। इस वक्त इनके और पीर भाई मौलाना हसामुद्दीन मुल्तानी, मौलाना जमालुद्दीन नुसरत खानी और मौलाना शरफुद्दीन याहिया भी मौजूद थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मौलाना हसामुद्दीन मुखातिब करके फरमाया, जो कोई दिन को रोजा रखे और रात भर इबादत करे तो वो बेवाओं का अंजाम देता है। ये किताब अदलो इंसाफ पर मबनी सच्ची कहानियां का बकिया हिस्सा पार्ट 9 में समाप्त फरमाइए।